पृष्ठ संख्या 123। विचक्षणता शब्द यहाँ अपने शाब्दिक अर्थ में उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना अपनी ध्वन्यात्मकता में। यहाँ वह शब्द भी नहीं है बल्कि अनिवार्य और सार्थक नाटकीय शब्द है। दूसरा उदाहरण, कालिदास, कहो आजकल किसी नए छंद का अभ्यास कर रहे हो? विलोम, छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है। कालिदास, मैं जानता हूँ तुम्हारी वृत्ति दूसरी है। उस वृत्ति ने संभवतः छंदों का अभ्यास सर्वथा छुड़ा दिया है। विलोम, आज निसंदेह तुम छंदों के अभ्यास पर गर्व कर सकते हो। अथवा मल्लिका, आर्य विलोम, मैं इस प्रकार की अनर्गलता क्षम्य नहीं समझती। विलोम, अनर्गलता? इसमें अनर्गलता क्या है? मैं बहुत सार्थक प्रश्न पूछ रहा हूँ। क्यों कालिदास, मेरा प्रश्न सार्थक नहीं है? क्यों अंबिका? अर्थात राकेश ने उचित शब्द चुने ही नहीं हैं, उनको पूरी अर्थवत्ता दी है, क्योंकि यहाँ शब्द पात्र की मनः स्थिति, द्वंद और चरित्र से जुड़े हैं। साथ साथ रंगमंच को एक पूरा अनुभव, सजीव सार्थक चेतना देने वाले हैं। विभिन्न संकेतों ने, ध्वनियों ने ही प्राचीन कथानक और पात्रों से सारे आधुनिक संदर्भ प्रस्तुत किए हैं। नाट्य भाषा के गठन के साथ साथ यह नाटक ऐसी भाषा का उदाहरण है जिसमें काव्यात्मक तरलता और सरसता है, जो काव्यानुभूति और नाट्यानुभूति को करीब लाती है। मल्लिका जैसी एक निष्ठ भावात्मक प्रवाह में डूबी प्रेयसी और कालिदास जैसे कवि व्यक्तित्व से युक्त नाटक में भाषा का काव्यात्मक रूप आवश्यक भी है। वैसे भी कामायनी अगर अपने आप में पूरा नाटक है, या प्रलय की छाया, राम की शक्ति पूजा और अंधेरे में जैसी लंबी कविताएं अगर नाटकीय प्रयोग हैं, तो आषाढ़ का एक दिन में एक पूरी कविता है। इलियट, चेखव, पिरेंडेलो जैसे नाटककारों और स्टानिस लावस्की और क्रेग जैसे निर्देशकों ने भी नाट्य भाषा और नाट्य कृति में काव्य तत्व और भावात्मक कल्पना को आवश्यक माना है। संकेत, व्यंजना, ध्वनि, दृश्यत्व और शब्द की लयात्मकता, एक काव्यमय वातावरण पूरे नाटक का प्राण है। अर्थात मीलर और आर्डेन दोनों ही कहते हैं कि नाटक की बनावट में काव्य एक अनिवार्य तत्व है। प्रसाद की नाट्य भाषा की तरह आषाढ़ का एक दिन में राकेश की नाट्य भाषा अलंकारों, प्रतीकों, बिंबों में बोझिल नहीं है। वह नाट्यानुभूति और संयम से उपजी भाषा है, जो सिद्ध करती है कि गद्य और पद्य की भाषा में बहुत अंतर नहीं है। दोनों में एक उपकरण प्रयुक्त होते हैं। केवल भाषा ही के कारण इस नाटक में मल्लिका और कालिदास के भावात्मक संबंधों से उत्पन्न वातावरण की सृष्टि और एक आद्यंत बाह्य रोमांटिक दृष्टि उत्पन्न होनी चाहिए थी, वह हो सकी है। पृष्ठ संख्या 124। सामान्य रूप में समझना चाहें तो कह सकते हैं कि राकेश की नाट्य भाषा की पहल पहचान है भाषा और शारीरिक क्रिया का, भाषा और मन स्थिति का गहरा संबंध। समय, जीवन और दृष्टि बदलने के साथ साथ भाषा उसकी लय भी अपने आप बदल जाती है। लंबे लंबे भाषणों, उपदेशों और खास तरह की फालतू हरकतों से आज चिढ़ पैदा होती है, उसी तरह नाटक में भी जोर जोर से शब्दों का उच्चारण मात्र करना और व्यर्थ हाथ पैर हिलाकर पटक कर भाव प्रदर्शन करना आज अस्वाभाविक लगता है। हिंदी के अधिकांश नाटकों में शब्द अलग मिलेंगे, शारीरिक क्रिया अलग या इससे अधिक कुछ हुआ भी तो यह कि शब्द के अनुरूप क्रिया होगी, जबकि राकेश के नाटकों ने नाट्य भाषा की इस कृत्रिमत्ता और जड़ता को तोड़ते हुए भाषा के नए मानदंड स्थापित किए हैं। यहाँ शब्द स्वयं क्रिया का काम करते हैं और क्रिया की भाषा को ढालते हैं, अर्थात भाषा और क्रिया का नियोजन, आंतरिक गठन पहली बार मोहन राकेश में मिलती है। मल्लिका का ग्रंथ उठाना रखना, श्यामांग की पत्तियों को तोड़ते उलझाने की हरकत शब्द से अलग नहीं है। मुद्रा और संवाद आपस में पिरोए हुए हैं। लहरों के राजहंस में वे दोनों मिलकर अधिक सार्थक इसीलिए भी हैं कि उनसे श्यामांग के व्यक्तित्व की उलझन, नाटक का संपूर्ण द्वंद्व भी ध्वनित होता है। अग्निकाष्ठ लेकर दीपक जलाने की श्यामांग की क्रिया भी अनकहे शब्दों में बहुत कुछ कह देती है। केवल भाषा के सहारे ही मल्लिका का भाव, भीना व्यक्तित्व, सुंदरी का रूप गर्व और सावित्री का आक्रोश भरा झुंझलाता व्यक्तित्व और उनका अंतर साफ समझ में आता जाता है। इन तीनों पात्रों की क्रियाएं, हरकतें भी शब्द बनती चली जाती हैं। सुंदरी का मदिरा कोष्ठ तक जाना, चषक में मदिरा ढालना, मदिरा पीना, सारी क्रियाएं शब्दों से जुड़ी ही नहीं हैं, शब्दों का काम भी करती हैं। और तब राकेश की इस बात का अर्थ समझ में आ जाता है कि बिंब से संयोजित शब्द ही स्थिर रंगमंच को गति देते हैं। वस्तुतः ऐसे ही शब्द प्रयोग या संयम से रंग सिद्धि संभव हो सकती है। ऐसी ही भाषा अभिनय की पूरी छूट देती सी लगती है। दोनों नाटकों की भाषा में कहीं भी औपचारिकता की गंध नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि सीखी हुई भाषा के अभ्यस्त हाथों से नाटकीय स्थितियों को डाला गया है, बल्कि भाषा स्वयं ढलती जाती है। शब्द के भीतर से उत्पन्न होती हुई नाटकीयता, जिससे रंगमंच की दृश्य संभावनाएं विस्तृत होती जाती हैं। लहरों के राजहंस के प्रथम अंक में नंद के मन की थकान शब्दों में जिस तरह अभिव्यक्त की गई है, वह दर्शक, निर्देशक, अभिनेता को निकट लाती है। शब्दों में ही पूरा सजीव चित्र अभिनय का विस्तार, उसके बाद नंद और सुंदरी की आपसी बातचीत से इतना उतार चढ़ाव, स्वर के इतने परिवर्तन हैं, सारी मनः स्थिति और द्वंद्व शब्दों से इस तरह उभरते जाते हैं कि पात्र शब्द बोलने की प्रतीक्षा में नहीं लगते, स्थितियां उससे अनायास बुलवाती हैं। कामोत्सव की बात नहीं कह सके, सुंदरी का यह प्रश्न, एक साथ सुंदरी के रूप गर्व, यशोधरा से स्पर्धा भाव, नंद को लेकर मन की आशंका को अभिव्यक्त कर जाता है। पृष्ठ संख्या 125। बहुत से स्थलों पर शब्द अपनी भाषागत सीमा को लांघ जाते हैं। पात्र की मनः स्थिति के अनुकूल भाषा के परिवर्तन की बड़ी सूक्ष्म पकड़ राकेश में है। गहरे आंदोलन, द्वंद्व और दर्प की अनुभूति के क्षणों में सुंदरी प्रायः प्रश्नवाचक वाक्यों में बोलती है। श्रृंगार प्रसाधन और प्रणय प्रसंग के समय एक पूरे रोमांटिक वातावरण की लय शब्दों से शब्दों के ध्वनि संयोजन के बनती बिखरती चली जाती है। यही नहीं, केवल एक शब्द मात्र द्वारा भी और कई जगह अनबोले शब्दों द्वारा भी अभिनेता को आंतरिक उद्भावना का पूरा अवसर मिलता है। जैसा राकेश ने कहा भी है कि वास्तविक अभिनय शब्दों का नहीं, शब्दों के बीच में होता है। आप मुझसे कहते हैं कि मैं यह बात सोच रही थी, मुझे यही बात तो सोचनी थी। जाने कैसा सा लगता है तपता टूटा हुआ प्रतिबिंब देखकर, यहाँ शब्द संगति अर्थव्यंजना करती चल रही है। शब्दों के साथ शब्दों के बीच में सुंदरी अंतर्मंथन की लय चल रही है। वाक्यों के बीच का रिक्त स्थान अभिनय कला को विस्तार देता है। दूसरी ओर आज के यथार्थ और आधुनिक जीवन की जटिलता को, अंतर्द्वंद को भी व्यंजित करता है। मेरे ख्याल में आषाढ़ का एक दिन भाषा ज्यादा ध्वन्यात्मक, सांकेतिक और अनेक भाषा रूप लिए हुए है, क्योंकि इस नाटक में नए आधुनिक संकेत हैं, अनेक व्यंग हैं, वर्तमान स्थितियां, विडंबनाएं और आज के प्रश्न हैं। विभिन्न प्रकार के पात्र हैं, इसीलिए भाषा एक ही होते हुए भी उसके रचाव में वैविध्य है। लहरों के राजहंस में चूंकि विविध संकेत, व्यंग, प्रश्न नहीं हैं, इसीलिए भाषा भी या तो रोमांटिक वातावरण बनाती चलती है या आधुनिक मानव मन के द्वंद्व को प्रस्तुत करती चलती जाती है। दोनों की भाषा अपने आभिजात्य गौरव में भी हमसे संबंध जोड़कर कहीं ज्यादा कटती है, और तब निर्देशक, दर्शक, अभिनेता तीनों रचना के साझेदार बनते चले जाते हैं। अलका जब प्रसाधन प्रसंग में बाधा डालकर भिक्षु मूर्ति के द्वार पर आने की सूचना देने जाती है, तो उसके वाक्यों के बीच बीच में कई बार रिक्त स्थान है, जो केवल उसके हांफने के स्वर या घबराहट के साक्षी नहीं हैं, बल्कि नंद और सुंदरी दोनों की पल पल बदलती मानसिक स्थिति के प्रदर्शन के लिए अवसर देते चलते हैं। आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस के तीसरे अंक में कालिदास और नंद के लंबे स्वगत केवल भाषा की सृजनात्मक शक्ति के बल पर अपने आप में पूरा नाटक है, पूरा अभिनय है। भाषा की गठन के कारण ही पूरा स्थिर दृश्य होते हुए भी और एक ही पात्र के निरंतर बोलते चले जाते हुए भी आंतरिक गति पैदा होती जाती है। अनेक अनेक प्रश्नों, द्वंद्वों के बीच उलझते जाना अपने आप से भी अकेला मनुष्य भाषा शक्ति से अपने को अभिव्यक्त करता हुआ पाश्चात्य निर्देशक क्रेक ने इसी अर्थ में नाटक की भाषा को कार्य कहा है। आधे अधूरे की नाट्य भाषा एक और ठोस कदम है, नाटककार की खोज का सफल स्थल परिणाम। पृष्ठ संख्या 126। यह राकेश की अपनी भाषा है, जिसे साधारण बोलचाल की भाषा बनाने का प्रयास किया गया है। यह कहना गलत होगा कि राकेश की नाट्य भाषा यहाँ एकदम बदल गई है। नवीनता केवल यह है कि यह भाषा नितांत बोलचाल की घरेलू भाषा है, इसीलिए उसके वाक्यों की बनावट बदली हुई है। पहले दोनों नाटकों की साहित्यिकता, रोमांटिक दृष्टि और भावुकता भरा लहजा की सीमा इसमें नहीं है, क्योंकि इस नाटक का वातावरण, पृष्ठभूमि, तेवर ही एकदम बदला हुआ है। नाटककार यथार्थ से सीधे जूझ रहा है, भाषा उस यथार्थ को सीधे पकड़ रही है। बड़ी पैनी, तीखी, व्यंग भरी, अकृत्रिम, नाटकीय भाषा। यद्यपि राकेश के मानदंड वही हैं, शब्द और क्रिया का संबंध, हरकत भरी भाषा, शब्द संयोजन से उत्पन्न लय, शब्द के भीतर से पैदा होने वाली नाटकीयता, रंग चेतना, आडंबरहीन आम आदमी की भाषा का नाटक। प्रसिद्ध अभिनेता निर्देशक ओम शिव पुरी का अपना अनुभव है कि इस नाटक में आज के एक गहन अनुभव खंड को मूर्त करने के लिए हिंदी के जीवंत मुहावरे को पकड़ने की सार्थक, प्रभावशाली कोशिश की गई है। पहले वाचन के समय ही मुझे इसको भाषा में बड़ी कशिश लगी थी। कहना न होगा कि इस नाटक की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता इसकी भाषा है। इसमें वह सामर्थ्य है जो समकालीन जीवन के तनाव को पकड़ सके। शब्दों का चयन, उनका क्रम, उनका संयोजन, सब कुछ ऐसा है जो बहुत संपूर्णता से अभिप्रेत को अभिव्यक्त करता है। लिखित शब्द की यही शक्ति और उच्चरित ध्वनि समूह का यही बल है जिसके कारण यह नाटक रचनाबंद और खुले दोनों प्रकार के मंचों पर अपना सम्मोहन बनाए रख सकी। नाटक का आरंभ होने पर स्त्री का प्रवेश होते ही जिस तेज चलती तीखी बोलचाल की भाषा का आरंभ होता है, अंत तक बिना कहीं लड़खड़ाए अनुकूल वातावरण पैदा करती हुई वही भाषा चलती है। पुरुष एक आ गई दफ्तर से, लगता है आज बस जल्दी मिल गई। स्त्री डॉट डॉट, यह अच्छा है कि दफ्तर से आओ तो कोई घर पर दिखे नहीं, कहाँ कहाँ चले गए थे तुम। पुरुष एक, कहीं नहीं, यही बाहर था मार्केट में। स्त्री, पता नहीं यह क्या तरीका है इस घर का, रोज आने पर 50 चीजें यहाँ वहाँ बिखरी मिलती हैं। पुरुष, लाओ मुझे दे दो। स्त्री ब्रैकेट में पैजामे को झाड़कर फिर से तहाती हुई ब्रैकेट क्लोज, अब क्या दे दूँ, पहले खुद भी तो देख सकते थे। पाजामे को झाड़ने और तहाने जैसे अपने चारों ओर के वातावरण को झाड़कर अपने को फिर उसमें एडजस्ट करने का असफल प्रयत्न है। रोजाना की बोलचाल का लहजा विन्यास देखने लायक है। यहाँ पहले दोनों नाटकों से लहजा और वाक्य की गठन एकदम अलग है। संदर्भ एक, नटरंग संयुक्तांक 10 से 11, शोभना भूटानी पृष्ठ संख्या 57। 2, नटरंग 21 पृष्ठ संख्या 14 से 20। पृष्ठ संख्या 127। साथ ही चरित्रों की टकराहट, जिंदगी की तलखी शब्द संयोजन में भरी पड़ी है। शब्द चयन बड़े गहरे अनुभव से हुआ है। शब्द को उसकी पूरी अर्थ शक्ति के साथ सजीव रखा गया है और उसे पूरी ध्वनि अनुभव से संपृक्त कर दिया गया है। स्त्री, शुक्र नहीं मानते कि इतना बड़ा आदमी सिर्फ एक बार कहने भर से। पुरुष एक, मैं नहीं शुक्र मानता। जब जब किसी नए आदमी का आना जाना शुरू होता है यहाँ, मैं हमेशा शुक्र मनाता हूँ। पहले जगमोहन आया करता था, फिर मनोज आने लगा था। स्त्री ब्रैकेट में स्थिर दृष्टि से उसे देखती ब्रैकेट क्लोज, और क्या क्या बात रह गई है कहने को बाकी, वह भी कह डालो जल्दी से। पुरुष एक, क्यों, जगमोहन का नाम मेरी जुबान पर आया नहीं कि तुम्हारे हवास गुम होने शुरू हुए। स्त्री ब्रैकेट में गहरी वितृष्णा के साथ ब्रैकेट क्लोज, जितने ना शुक्रे आदमी तुम हो उससे तो मन करता है कि आज ही मैं डॉट डॉट। पहले से चली आती हुई कड़वाहट और स्त्री के मन की सारी वितृष्णा, स्त्री मन की घुटन से पैदा होने वाला आक्रोश, नाशुक्रे शब्द के सही चयन और वाक्य में उसकी उचित स्थिति के कारण उस शब्द में ही इतनी आ गई है कि लेखक का निर्देश ब्रैकेट में गहरी वितृष्णा के साथ ब्रैकेट क्लोज करीब करीब व्यर्थ ही है। अनुभव का स्वतः स्फूर्त रूप तो वहाँ स्पष्ट है, जिसे बड़ी हरकत भरी फिसलती जाती पात्रों के व्यक्तित्व का अंश बनी हुई भाषा कहते हैं। रंग बोध से संपन्न यह हिंदी नाटक की एक देन है। पुरुष एक, हर एक के पास एक ना एक वजह होती है। इसने इसीलिए कहा था, उसने उस लिए कहा था। मैं जानना चाहता हूं कि मेरी क्या यही हैसियत है इस घर में कि जो जब जिस वजह से जो भी कह दे मैं चुपचाप सुन लिया करूं। हर वक्त धत्कार, हर वक्त की कोंच, बस यही कमाई है मेरी इतने सालों की। स्त्री ब्रैकेट में वितृष्णा से उसे देखती ब्रैकेट क्लोज, यह सब किसे सुना रहे हो तुम। पुरुष एक, किसे सुना सकता हूँ, कोई है जो सुन सकता है, जिन्हें सुनाना चाहिए वे सब तो एक रबड़ स्टैंप के सिवा कुछ समझते ही नहीं। मुझे सिर्फ जरूरत पड़ने पर इस स्टैंप का ठप्पा लगाकर डॉट डॉट डॉट। पुरुष एक, मैं घर में एक रबड़ स्टैंप भी नहीं, सिर्फ एक रबड़ का टुकड़ा हूँ, बार बार घिसा जाने वाला रबड़ का टुकड़ा। इसके बाद कोई मुझे वजह बता सकता है, एक भी ऐसी वजह की, क्यों मुझे रहना चाहिए इस घर में? पृष्ठ संख्या 128। देखने की आवश्यकता है कि अगर इन रेखांकित स्थलों को निकाल दिया जाए तो भाषा में वह हरकत नहीं रह जाएगी। नाट्य विधा की मौलिकता, सर्जनात्मकता से जन्म लेने वाला भाषा सौंदर्य ही नहीं रह जाएगा। रंगमंच की अभिनयात्मक भाषा में कुछ कमी आ जाएगी, हालांकि सारा सौंदर्य प्रभाव किसी एक शब्द प्रयोग का वाक्य में नहीं है, उस सारे लय नियोजन में ही है, ध्वन्यात्मकता में ही, जिसे राकेश ने अनिवार्य तत्व माना है। पात्र की आयु, व्यक्तित्व का प्रभाव भी भाषा पर पड़ता है, पढ़ना चाहिए। प्रायः कहा जाता है कि भाषा पात्रानुकूल है। अधिकतर हिंदी नाटकों में पात्र के अनुरूप भाषा का अंतर बड़ा ऊपरी होता है, उसमें आंतरिक सूक्ष्म पकड़ नहीं होती। राकेश में है, छोटी लड़की, नहीं आऊंगी, अंदर जाओ तो बाल खींचे जाते हैं, बाहर आओ तो किट पिट किट पिट किट पिट, और खाने को कोयला, अब उधर आकर इनके तमाचे और खाने हैं। लड़का, चुकंदर है वह आदमी जिसे बैठने का शऊर है न बात करने का। यहाँ अभिव्यक्ति दोनों की आयु के अनुरूप भी हुई है, और अधूरे घर में जीते पलते बच्चों की बनती जाती मनः स्थिति के अनुरूप भी। ध्वनि भी वही, लय भी वही, प्राणहीन शब्दों से नाटक की मुक्ति और नए अर्थ ग्रहण की शक्ति से युक्त शब्दों की उचित नाटकोचित संगति हिंदी में पहली बार आधे अधूरे में मिलती है। आक्रोश, निरंतर तेजी, बौखलाहट, कुढ़न, एक नया तेवर पूरे नाटक में शब्दों से, शब्दों की ध्वनि से उभरता जाता है। घर घुसरा, हड्डियों में जंग लग गई है आदि प्रयोगों में स्वाभाविकता और आंतरिक निरंतरता है। इस संबंध में राकेश के विचार बहुत स्पष्ट हैं। शब्दों के चुनाव की समस्या बहुत कुछ वस्तु की अपेक्षा पर भी निर्भर करती है। रचना का वस्तु पक्ष भी आज बहुत से शब्दों के आयात के लिए उत्तरदायी है। आधे अधूरे में राकेश ने साहित्यिक भाषा और जनभाषा के बीच का अंतर मिटाना रचनात्मक साहित्य के लिए आवश्यक समझा है। यह खाई उसमें उतनी गहरी नहीं है, इसीलिए संप्रेषणीयता भी अधिक है। संदर्भ एक, परिवेश, पृष्ठ संख्या 196।